नियम निष्ठ आदमी को बहुत ऊंचा उठाते, तो जो व्रत का शास्त्र का और गुरु वचन का आदर करता वो चीर आदरणीय हो जाएगा। ज्ञानी को कार्यकारण का नियम लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता, भूख भी लगती है, शरीर बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है, तो हम लोगों को ज्ञानी दिखता है शरीर, और ज्ञानी कहाँ है? जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं पहचान सकते। भिक्षा मांग के खाएंगे और राज्य का दान कर देंगे, उनको कौन, मच्छर से तो डरते और शेर को पालतू बना देते, इनकी गति धीरा की गति धीरा जाने। सम्यक प्रकार का संकल्प क्या है कि जीव सुख के बिना नहीं रह सकता, सुख चाहिए, बीड़ी से सुख चाहिए, भोजन से स्वाद सुख चाहिए, संभोग से सुख चाहिए, प्रशंसा से सुख चाहिए, सुख के बिना नहीं रह सकता। तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि भाई सुख विषयों में विकारों में सुख भास है, और सच्चा सुख आत्मा में। तो शास्त्रों का तो ज्ञान हो जाए, गुरु के कृपा से मुफ्त में सत्संग मिल जाए, लेकिन तप न होने के कारण बुद्धि निर्मल नहीं, निर्मल बुद्धि ने तो सच्चा सुख नहीं मिलता, इसलिए जीव विकारी सुख में फंसता जाता है। दादर नहीं दवा करो, खंजवाड़ करो, एटल थोड़ू सारू लगे, अमेरिका जो तो नहीं रहता है, अटलू था तो नहीं रहता है, सेवटे शमशान में जे तो नहीं रहता है, शमशान में नहीं रहता थी। तो शास्त्र का ज्ञान और तप से बुद्धि निर्मल होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वो मुझे प्राप्त करता है। छल छिद्र कपट स्वप्न मोहि स्वप्न न भाव, जो चेतन है वो छल कपट करेंगे तो चेतन तो जानते हैं। तो तदिक्षण की जिसको प्राप्त होती वो जानना चाहे तो स्वरूप में बैठ के विदेश दूसरे के मन का रहस्य जान सकता है, और दूसरे ढंग से भी, फिर उसमें सच्चाई क्या है अंतरात्मा की आवाज से निष्कर्ष भी निकाल सकता है। इसलिए आप्त वचन प्रमाणभूत माने जाते हैं, दूरदृष्टा पुरुष हो जाता है, ब्रह्मवेत ऋषि हो जाता है। ऋषि तो मंत्र दृष्टा है, मंत्र का दृष्टा हो जाते। तो तांत्रिक मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, साबरी मंत्र हो, वशीकरण हो, मोहन हो, मारण हो, उच्चाटन हो, ये सारे मंत्र संकल्प का ही तो परिणाम है, संकल्पों का ही तो रूपांतर है। तो विषय विकारों में जाएंगे तो संकल्प सामर्थ्य नाश हो जाएगा, और प्राण शक्ति निम्न हो जाएगी, नीचे के केंद्रों में निम्नता आ जाती, ऊपर के केंद्रों में श्री कृष्ण भले गोपियों के बीच दिखते हैं, गोपियाँ उनको पति भाव से यार भाव से देखती है, लेकिन कृष्ण कौन से केंद्र में है, कुछ कृष्ण कहाँ है, वो तो कोई दूसरे श्री कृष्ण कृष्ण जी की महिमा जाने। ऐसे बुद्ध है, महावीर है, या और ब्रह्मवेता है, कबीर जी है, तो उनकी स्थिति इतना विरोध हो रहा है पंडों का, वैश्या गले पड़ रही है, फिर भी कबीर जी उद्विग्न नहीं हुए, विचलित नहीं, क्योंकि बुद्धि निर्मल है, शास्त्रों का ज्ञान। तो मती को निर्मल करने के लिए तप की आवश्यकता है, और तप में भी जितना ईश्वर प्रणिधान होगा, गुरु कृपा होगी, उतना तप सुचारू रूप से होगा, फलित होगा। जितना जीवन में नियम निष्ठा हो, गांधी जी क्यों महान हो गए, पूजनीय हो गए, माननीय हो गए, सभी पार्टी के लोग गांधी जी के लिए बोल के अपना खिचड़ी से पका लेते हैं, गांधी जी का चित्र रख लेते हैं, कई दुकानों वाले, कई ग्राम उद्योग वाले, हम तो गांधी जी के नाम से इतना कैसे चल रहा है। गांधी जी अपना नाम का ब्रांड लेके चलाते तो भी इतने साबुन नहीं बिकते जितना ग्राम गांधी ग्राम उद्योग के नाम से बिकते। संभाल संभाल के एक आदमी मर जाए, थक जाए, तो भी इतना नाम नहीं होगा, क्योंकि सुख लेने की भावना की अपेक्षा पर दुख का तरता मानवीय संवेदना से उनका हृदय द्रवित हो गया। दूसरों के दुख निवारण के लिए दुख सह लिया, कष्ट सह लिया, अंग्रेजों के जुलुम सह लिए, सह लिए तो लाचारों के नहीं सह, तप से सह, तो और तेज हो गया उसका परिणाम। अपने लिए सहते हैं तो मजबूर है, लेकिन परहित के लिए सह, तो परहित के इसलिए सह तो तप हो गया। तो उस तप में खाली परहित परहित नहीं, प्रार्थना करते थे, जप करते थे, गीता पढ़ते थे, नियम निष्ठा थे। 36 साल के 32 साल में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। मैं तो पहले तो बहुत संसार में पिछला व्रत ले लिया तो ले लिया बस, तो नियम निष्ठा थी। नियम निष्ठा आदमी को बहुत ऊंचा उठाती। गांधी जी लिखते हैं कि जो बोलता है अच्छा देखेंगे, हो सका तो करूंगा, कोशिश करूंगा, भगवान की कृपा हो। ऐसे लोग जब बोलते तो मुझे बड़ा दुख होता है, आश्चर्य होता है, ये कोई बात, कोई अच्छी बात आई तो फिर देखेंगे, सोचूंगा, अच्छाई को पाने के लिए तो नियम निष्ठा लेनी पड़ती है, व्रत लेना पड़ता है। व्रते न दीक्षा मापन होती, ये सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई व्रत नहीं। कुछ ऐसे संत लोग होते हैं भाई, सुबह उठे, नहाए धोए, ध्यान भजन किया, अपना भूख लगी, दूध बोध पिया, लेकिन जब तक नियम नहीं किया तब तक नहीं पीना है तो नहीं पीना है, फिर चाहे नहाए धोए कुछ भी हुआ, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 1:30 बज गए, 2 बज गए, तो क्या है, अपना नियम पूरा करना है तो करना है। बिना नियम के खा लिया, बिना नियम के पी लिया तो जीवन में क्या बरकत आएगी। तो नियम निष्ठा से तब में सफलता आती। जो ऊंचे पदवे पे आए हैं, आटे कटे हैं, तो ऊंची गादी पे बैठने से आटे कटे नहीं हुए, उन्होंने जो भोजन किया वो पचाया है तब आटे कटे। ऐसे जो जिनका आध्यात्मिक ऊंचाई है तो खाली सुन के बोल के नहीं हुई है, उन्होंने अपना पचाया है, अपने को ढाला है, मन के कहने में पतंग की नाई, तितली की नाई इधर उधर नहीं गए, तो वो ही परिपक्व हो गए। अगर तितली की नाई इधर से उधर तो वो तो फिर खड़िया हो जाते, वैराग तो आता है, घर तो छोड़ लेते, फिर थोड़े दिन मन लगा इधर, फिर उधर, फिर उधर, फिर उधर, रोज बोलते गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, लेकिन करेंगे अपने मन की तो ये नियम निष्ठा नहीं है। हम तो एक दिन भी मन नहीं चाहता था, गुरु ने कहा वहां रहो, तो फिर हम 7 साल रहे। तो ऐसा कुछ मन के शिष्य का दुर्भाग्य है कि गुरु को पूछना पड़े कि बेटा तेरे को शिष्य तेरे को क्या करना है, क्या आना करता है। नहीं तो गुरु जानते उसके कैसे उन्नति होती, गुरु जानते, पूछना पड़ता है कि तुम ये करोगे तुमको ये ठीक लगेगा। तो अभी वो दिखने में शिष्य है लेकिन वो मन का दास है, इसीलिए गुरु को पूछना पड़ता है। मन का दास तप में सफल नहीं हो सकता। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं,
हे राम जी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है,
शास्त्रों का अभ्यास कभी किधर से पढ़ा कभी किधर से पढ़ा फिर किताब रख दिया, नहीं, शास्त्र को आदर से पढ़ेगा तभी ज्ञान पचेगा। किताब पढ़ा फिर उठा करके रख दिया, फेंक दिया, रख दिया, कहीं नहीं, आदर से शास्त्र का, ज्ञानदाता ग्रंथ का आदर नहीं, इधर से उधर पटक दिया, इधर खुला छोड़ के चल दिया, उसको शास्त्र पढ़ने का पुण्य नहीं हुआ। है तो शालिग्राम, लेकिन आदर करते तो शालिग्राम की पूजा का फल होता है। है तो लिंग शिव जी का, आदर करते तो शिवलिंग की पूजा का फल होता है। जैसे शास्त्र मिल गए, उठाना पड़ा तो ज्ञान बैठेगा नहीं। आदर सहित शास्त्र का अध्ययन कर, आदर सहित अपने व्रत का पालन कर। तो जो व्रत का, शास्त्र का और गुरु वचन का आदर करता है वो चीर आदरणीय हो जाएगा, और जो आदर नहीं करेगा वो तिकड़म्बाजी कितनी भी करे आदर उसका हो ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। कार्य कारण के नियम, कहते पांडव कहीं जा रहे थे, एक ऐसी भयानक जगह से गुजरे, एक ब्रह्म राक्षस ने पांडवों को रोक दिया, प्रश्न किया, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे, तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो यार तुम्हारा खात्मा सब, ऐसी कुछ कहा। क्या प्रश्न है? बोले ज्ञानी को कार्य कारण का नियम लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता? यक्ष का प्रश्न उत्तर वो अलग है महाभारत में, ये अलग है। ज्ञानी को कार्य कारण का नियम लागू पड़ता है कि नहीं पड़ता? समझो शास्त्र का ज्ञान पा लिया, बुद्धि सूक्ष्म कर ली तप करके, पर ब्रह्म परमात्मा के सुख में स्थिति कर ली, फिर उसको कार्य कारण का एक सृष्टि के नियम लागू पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? अगर पड़ते हैं तो निर्बंध कैसे, और नहीं पड़ते हैं तो फिर उसका शरीर बीमार होता है, मरता है, खाता है, पीता है, सब कैसे? बोले ज्ञानी महापुरुष को कार्य कारण के नियम लागू नहीं पड़ते ऐसी बात भी नहीं, और पड़ते हैं ऐसी बात भी नहीं। तुम ऐसा सवाल, बढ़िया सवाल कैसे लाते हो, कैसे पूछते? बोले मैं पूर्व काल में बड़ा पंडित था, उपदेश करता था, शास्त्र पढ़ के भाषण ठोका, तो उसमें शास्त्र की अवज्ञा हो गई। इसलिए मैंने बड़े दुख पाए, लोमड़ी होके बैठकर चिल्लाता रहा, हाउ हाउ हाउ, शास्त्र की व्याख्या करने का अधिकार नहीं था, व्याख्या करता रहा, सम्मान भी होता था पंडिताई के कारण। वाणी वैखरी शब्द जरे भुक्तये न तू मुक्तये, भोग विलास का साधन बना लिया, यश का भोग का साधन बना लिया था शास्त्र को, इसलिए मेरी बहुत दुर्गति हुई। मैंने अनुनय विनय किया संयमपुरी के अधिष्ठाता को, तो बोले जब ज्ञानी शास्त्र के विषय में ब्रह्मवेता के विषय में पूछोगे और उचित उत्तर मिलेगा तब तुम्हारी लोमड़ी आदि दिनी योनियां पाते पाते कोई भी योनि में जाओगे, जब ये प्रश्न का तुमको उत्तर समाधान मिलेगा और तुम संतुष्ट रहोगे तब तुम्हारा समझो कर्म कट गया, सदगति हो जाएगी, विद्वान तो हो तुम। तो ये शरीर तो मरता है, सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना जन्मों के बाद भी, तो उसमें संस्कार भी रहते हैं अपने। तो युधिष्ठिर महाराज, आप जैसे महापुरुष के सिवा मेरा और कौन समाधान करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, ज्ञानी को कार्य कारण के नियम लागू पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं, और तुमने शास्त्र पढ़े और फिर तुमने देखा लोकाचार में तो ज्ञानी ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तुम भाषण ठोकते रहे, उसका अपराध हो गया। शास्त्र को ऊपर ऊपर से वचनों को पढ़ के रहस्य जाने बिना शास्त्र की व्याख्या करने का दोष लगा है तुमको। आजीविका के यश के और आजीविका के उद्देश्य से किया, आत्म शांति के लिए करते तो किसी महापुरुष की आज्ञा में रहते, तप करते, मन को संयत करते, आप तो मनमुख बन गए। इसलिए मनमुख योनियों में गए, जैसे जीव अपने मन से भटकते रहते, लोमड़ी होके भी भटके, सुअर होके भी भटके, गिद्ध होकर भटके, ऐसे कई गिदड़ होके भटके, कई योनियों में भटके, बोले बहुत थका हूं, थोड़ा बहुत जब तप का प्रभाव था इसलिए ब्रह्म राक्षस हुआ, और ये वरदान मिला कि तुम्हें कोई पुरुष मिल जाएंगे, तो जब तुमने ठीक उतर पाया तो तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे, तुम्हें आत्म शांति मिलेगी, फिर सदगति होगी। सदगति मतलब मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, नीच गति है तो सदगति सात्विक गति होगी, फिर उसमें यात्रा करो। सदगति का मतलब है नहीं कि साक्षात्कार हो जाए, दुर्गति सदगति। तुम्हारा दुर्गति से मुझे छुड़ा कृपा। युधिष्ठिर तनिक शांत हुए कि पूर्व काल में महापुरुषों की कृपा से ये हम सुन पाए हैं, देखो कितनी नम्रता है। श्री कृष्ण जिनके लिए उठ के खड़े होते थे, युधिष्ठिर आते तो कृष्ण उठ के खड़े होते सम्मान में, युधिष्ठिर जाते तो पीछे पीछे चलते, क्योंकि राज दरबार में राजा है, उम्र में भी जैसे कुछ जो भी होगा ऐसा भी वर्णन सुनाया मैंने। ऐसे श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पूर्व काल में हमने सुना है कि ज्ञानी पर कार्य कारण के नियम लागू नहीं पड़ते, और देखा भी जाता है कि नियम लागू पड़ते हैं, तो फिर इसका निष्कर्ष ही निकला कि वे महापुरुष स्वीकार करते हैं, कार्य कारण के नियम स्वीकार करते हैं। ज्ञानी जहां बैठे हैं वहां नियम लागू नहीं पड़ता, और लोग जहां उन्हें देखते हैं वहां नियम लागू पड़ता है, इसलिए ज्ञानी स्वीकार करते हैं, हाँ भाई हमने खाया, हमने बोला, हमने किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हम ऐसे कार्य कारण के नियम को स्वीकार करके व्यवहार करते हैं। बाकी तो उस ब्रह्म में टिकने के बाद क्षीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावारे, उनके सारे कर्म बंधन कट जाते, मुक्त है। मुक्त है तो फिर नियम लागू पड़ा तो मुक्त कैसे, और नियम लागू नहीं पड़ते तो खाते पीते कैसे। भूख भी लगती है, शरीर बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो हम लोगों को ज्ञानी दिखता है शरीर, और ज्ञानी कहाँ है? जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं पहचान सकते। भगवान की लीला भगवान ही जानते, अपन क्या जाने। ब्रह्म की लीला ब्रह्म ही जानते। कहा नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। ये नाम जो जानते हैं तो शरीर का नाम है, इसी को मेरा बोलते हैं। तुम ही जानो, तुम ही। हाँ जी,
हे मुनीश्वर, जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे परम समाधि में स्थित हैं, उनको उत्थान कदापि नहीं होता।
उत्थान नहीं होता, अभी ध्यान में है, अभी बाहर उठे, अभी बोले ही है, या हमको दिखता है। तो ज्ञानी स्वीकार करते कि हम आए, हम मिले, स्वीकार करते। बाकी उनको समाधि से उत्थान कभी नहीं होता। सदा समाधि संत की, आठों पैर आनंद, अकलमता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। इंद्र का पद भी तुच्छ लगता तो पीएम पद की क्या बात है। वो तो दे डालते हैं संकल्प मात्र से, भिक्षा मांग के खाएंगे और राज्य का दान कर देंगे। उनको कौन, मच्छर से तो डरते और शेर को पालतू बना देते। ऐसे ऐसे इनकी गति, धीरा की गति धीरा जाने। ज्ञानियों के संपर्क में थोड़ा झलक, थोड़ा आभास मिलता है, नहीं तो लोग अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। फिर वासना जोर करती है, मेरे को पुत्र मिले, मेरे को फलाना मिले, मैं ऐसा करूं, मैं प्रसिद्ध हूं, मैं सत्संग क्या करूं, मैं फलाना करूं, बस उसमें फिर डाउन होने के रास्ते चले जाते। तुम जो हो उधर खोजो, जो मिलेगा वो कब तक। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते, अपने प्यारे स्वरूप से, स्वरूप ज्ञान से, गुरु ज्ञान से जो विलग हुए, मनमुख हुए, वो दर बदर सुख के लिए भटकते। और जीव की मांग है सुख, चिदाभास सुख ही चाहता है। जो भी कुछ करते सुख के लिए करते, लेना देना ये वो। तो ज्ञानी सुख लेने के लिए सत्संग करेंगे, ज्ञानी स्वीकार कर लेगा कि हाँ भाई अच्छा लगा सुख को मिलना। ज्ञानी अपने आप में सुखी होता है, वो सुख का दाता होता है, वो कुछ करके सुखी हो जाए ऐसा नहीं होता उनमें। एक ज्ञानी मुक्त होता है सुख की वासना से, बाकी सब सुख की वासना से कर्म बंधन में पड़े। निर्वासनो शोभते बुद्धा, निर्वासनो निरालंबो शोभते बुद्धा। वासना रहित किसी चीज वस्तु आकृति का अवलंबन नहीं, वो बुद्ध पुरुष शोभा पाता है। तस्य तुलना की न जाए, उस आत्मज्ञानी की तुलना किससे करोगे। कहते कि उसकी फिर सदगति, लूमड़ी की सदगति हो। लूमड़ी के शरीर ब्रह्म राक्षस के शरीर में कई शरीरों में बैठ के एक स्वस्वरूप का बोध मिलने से जो पुण्य हुआ, तो ये ज्ञान सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं। सत्संग सांभरवाथी पाप नष्ट है। પોતાના તરફથી આગ્રહ ન રાખે કે મારે આવું જોઈએ, મારે આવું જોઈએ, બસ મને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થઈ જાય, પ્રભુ એવો દી દેખાડ, ભૂલાવી હું મારું ને તારામાં ડૂબાડ, શરીર હું છું, આ ઘર મારું છે, આ ડોલર મારા છે, આ પૈસા મારા છે, આ ઇજ્જત મારી છે, આ નામ મારું છે, એ બધા મનના ખેલ છે. એ બધું મન કહે છે. અને હું ઘીજા વાટો કઈ નહીં, સમાધિમાં વાટું કઈ નહીં, પણ સમાધિમાં તું તો છે મારા પ્રભુ. હું ગીજામાં તું તો છે. મનના વિચારો બદલાય, બુદ્ધિના ડિસિઝન બદલાય, પણ એને જોનાર તું કોણ? મારા વાલા, મારા ગુરુદેવ. ગુરુજી આ મારી સંભાળ લેજો, દિલડામાં રહીને દોરવણી દેજો. હા તો કે હું છું, મારા ઉપર વિશ્વાસ નથી? બધે હું છું તો પછી તું ચિંતા ના કર. શ્રી અરવિંદ ઘોષ દેશબંધુ બેરિસ્ટર મેરે તરફ સે નિઃશુલ્ક લડ રહે, લેકિન 101 કેસ મેરે પર લગા દે જુલમી અંગ્રેજો ને, અલીગઢ કાંડ કે હું ફાંસી દેને કે ઇરાદે સે બ્રિટિશ શાસન ને મેરે પર બોમ્બ કાંડ કા ભી ખટલા મડ રહ્યા હૈ. કલ્પેશ યે ક્યા કરું, વૈસા એસા આરોપ કર રખેંગે, દેશબંધુ કો એસા સમજા દું, ઉસકા જવાબ યે થી એ થી ક્યા કરું. સોતે સોતે ધોકા હૈ અંદર મેં, જબ સબ મેં હું તો તું ચિંતા ક્યું કરતા હૈ? લેકિન કલ તો ફતવા હૈ, જજમેન્ટ હૈ, એક સાલ પૂરા હોતા હૈ, કલ કા એક દિન ઉપર હોગા, મેરે જીવન ઓર મોત કા ડિસિઝન કલ હૈ, ન્યાયાધીશ કે હાથ. મેને તેરે ગુ યહાં ભેજા હૈ, મેં હી તેરા અંતરાત્મા. જબ સબ મેં હું તો તું બીચ મેં ચિંતા ક્યું કરતા હૈ? મેં તો સો ગયા, સુબહ ઉઠા ફિર ભી દેખા કે આજ ફાંસી લગેગી કે મુક્તિ મિલેગી. આખિર મેં કોર્ટ મેં લેવા ગયા, કટઘરે મેં ખડા હુઆ, કેદી દો કેદી ઝલ્લી હવા હાંકને કે પંખા. ઉસ સમય એસા હોતા થા, દો રસ્સિયાં હોતી થી, ફિર ઉસમે બાંસ હોતા થા, ઓર બાંસ પે ગુદડી સેકર ઉસકો યું ખીંચતે હવા ડાલતે થે. હમ બચ્ચે થે તબ હમને દેખી થી, પંખે નહીં થે. 1945 કે આસપાસ દેશી પંખે થી, તો ઝલ્લી બોલતે થે સિંધી ભાષા. તો હાંકને વાલે તો જેલ સે બુલાયા જાતે થે, ન્યાયાધીશ સરકારી વકીલ, પર વો પંખા હાંકતા. મેં કટકરે મેં હમારો દેશબંધુ, આજ મેરે જીવન ઓર મોત કા ફૈસલા દેખને કે લીએ ભારત માતા કી આઝાદી સે ઉમડતે હુએ દિલોને પ્રાંગણ ભર દિયા. મેં સોચતા હું ક્યા હોગા, સોચતે સોચતે મેરે હું વિચાર કરું કે આજે મને ફાંસી મળશે કે શું થશે. વિચાર કરતા કરતા, પ્રાર્થના કરતા કરતા મારા ડોળા સહેજ ઉપર ચડી ગયા, તિલક કરા ત્યાં, આંખો મારી ઊંચી આવી, આંખો બંધ થઈ ગઈ ઊંચી ઊંચી આવી, તો મને દેખાયું કે જજમાં મારો ઇષ્ટદેવ બેઠો છે, સરકારી વકીલમાં પણ એ પેલા કેદી, હું જો કેદી હૈ ઉનમે ભી વહી, ઓર દેશ ભક્તિ સે ભરે હુએ લોગ જો આયે ઉનમે ભી વહી હૈ. જબ સર્વત્ર મેં હું તો તું ચિંતા કરતા હૈ? મેં નિશ્ચિંત હો ગયા, કેસ ચલા, મેરે આરોપો કો જૈસે તિનખો કો તોડ તોડ કે ફેંકતે, એસે દેશબંધુ કે દ્વારા એસા કુછ ભગવાન ને લે રાખે કે સારે સરકારી આરોપ એક એક કરકે તોડ દીએ દેશબંધુ ને, એસા ઉનકા પ્રભાવ હૈ. આ શામ હોતે હોતે જજ કો કહેના પડા કે અરવિંદ નિર્દોષ, અરવિંદ પે આરોપ હૈ, હુએ ખંડિત હો ગયે. ફિર તો લોકોને અરવિંદ મુજે कंधे पे बैठा, जय श्री कृष्ण जय श्री अरविंद, जय श्री कृष्ण जय श्री अरविंद के नारे पर कैसी भगवान की लीला। तो ये उपासक प्रार्थना से, अर्थात अहम प्रार्थना क्या है कि अहम की विश्रांति लेकर अपने संकल्प को निश्चिंतता देने की रीत है। योग क्या है कि अपने चित्त को एकाग्र करने की रीत है। आशीर्वाद क्या है कि अपने संकल्प में सहायक संकल्प की मदद। श्राप क्या है कि अपनी उद्दंडता को, मनमुक्ता को दंड का संकल्प लगाओ। नल को भर को दंड का संकल्प लगा, वृक्ष बन गए। वो होल गंधर्व था, वो मगर बन गया था। वो देवल ऋषि की मजाक किया था, देवल ऋषि ने श्राप दिया। तो तप में कितनी ताकत है, जरा सा बोल दिया वो कह रहा। तो आप कहां, तो प्रकृति में परिवर्तन करने की ताकत वाले चेतन, और कहां सुख के लिए भटकते फिरते।